आप सुन रहे हैं प्रतिनिधि कहानियां बाय इस्मत चुगताई, मेरी यानी सुरभि की आवाज में। और आज की कहानी है दो हाथ। राम अवतार लामपर से वापस आ रहा था। बूढ़ी मेहतरानी अब्बा मियाँ से चिट्ठी पढ़वाने आई थी। राम अवतार को छुट्टी मिल गई थी, जंग खत्म हो गई थी ना, इसलिए राम अवतार 3 साल बाद वापस आ रहा था। बूढ़ी मेहतरानी की चीपड़ भरी आंखों में आंसू टिमटिमा रहे थे। मारे शुक्र गुजारी के वह दौड़ दौड़ कर सबके पांव छू रही थी, जैसे उन पैरों के मालिकों ने ही उसका इकलौता पोत लाम से जिंदा और सलामत मंगवा लिया हो। बुढ़िया 50 बरस की होगी, पर 70 की मालूम होती थी। 10-12 कच्चे पक्के बच्चे जने, उनमें से बस राम अवतरवा बड़ी मन्नतों और मुरादों से जिया था। अभी उसकी शादी रचाए साल भर भी नहीं बीता था कि राम अवतार की पुकार आ गई। मेहतरानी ने बहुत बावेला मचाया मगर कुछ न चली। और जब राम अवतार वर्दी पहनकर आखिरी बार उसके पैर छूने आया तो वह उसकी शानो शौकत से बेइंतहा मरगूब हुई, जैसे वह कर्नल ही तो हो गया था। शागिर्द पेशे में नौकर मुस्कुरा रहे थे। राम अवतार के आने के बाद जो ड्रामा होने की उम्मीद थी, सब उसी पर आस लगाए बैठे थे। हालांकि राम अवतार लाम पर तोप बंदूक छोड़ने नहीं गया था, फिर भी सिपाहियों का मैला उठाते उठाते उसमें कुछ सिपाहियाना आन बान और अकड़ तो पैदा हो ही गई थी। भूरी वर्दी डांट कर वह पुराना राम अवतरवा वाकई न रहा होगा, नामुमकिन है। वह गोरी की करतूत सुने और उसका जवान खून हथक से ना खौल उठे। ब्याह कर आई तो क्या मुसमसी थी गोरी, जब तक राम अवतार रहा उसका घूंघट फुट भर लंबा रहा और किसी ने उसके रुख पर नूर का जलवा ना देखा। जब खसम गया तो कैसी बिलक बिलक कर रोई थी, जैसे उसकी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए उड़ रहा हो। थोड़े दिन रोई रोई आंखें लिए सर झुकाए मेले की टोकरी ढोती फिरी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके घूंघट की लंबाई कम होने लगी। कुछ लोगों का ख्याल है यह सारा बसंत रुत का किया धरा है। कुछ सावगो कहते थे गोरी थी ही छिनाल, राम अवतार के जाते ही कयामत हो गई। कमबख्त हर वक्त ही हर वक्त इटलाना, कूल्हे पर मैले की टोकरी लेकर कांसे के कड़े छनकाती जिधर से निकल जाती लोग बदहवास हो जाते। धोबी के हाथ से साबुन की पट्टी फिसलकर हौज में गिर जाती। बावर्ची की नजर तवे पर सुलगती हुई रोटी से उचट जाती। भिश्ती का डोल कुएं में डूबता ही चला जाता। चपरासियों तक की बिल्ला लगी पगड़ियां ढीली होकर गर्दन में झूलने लगती। और जब यह सरापा कयामत घूंघट में से बांध फेंकती गुजर जाती तो पूरा शागिर्द पेशा एक बेजान लाश की तरह सकते में रह जाता। फिर एकदम चौंक कर वह एक दूसरे की दुर्गति पर ताना जनी करने लगते। धोबन मारे गुस्से के कलफ की कूड़ी लौट देती। चपरासन छाती से चिमटे लौंडे को बेबाक घूम के जड़ने लगती। और बाबरची की तीसरी बीवी पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाता। नाम की गोरी थी पर कमबख्त स्याह बहुत थी, जैसे उल्टे तवे पर किसी फुहड़िया ने पराठे तलकर उसे चमकता हुआ छोड़ दिया हो। चौड़ी फुकना सी नाक, फैला हुआ दहाना, दांत मांजने का उसकी साथ पुश्त ने फैशन ही छोड़ दिया था। आंखों में काजल थोपने के बाद भी दाई आंख का भेंगापन ओझल ना हो सका। फिर भी टेढ़ी आंख से न जाने कैसे जहर में बुझे तीर फेंकती थी के निशाने पर बैठ ही जाते थे। कमर भी लचकदार न थी, खांसी कुटला सी थी, जूठन खा खा कर दुम्बा हो रही थी। चौड़े भैंस के से खुर जिधर से निकल जाती कड़वे तेल की सड़ान छोड़ जाती। हाँ, आवाज में बला की कूक थी। तीज त्योहार पर लहक कर कजरिया गाती तो उसकी आवाज सबसे ऊंची लहराती चढ़ती चली जाती। बूढ़ी मेहतरानी यानी उसकी सास बेटे के जाते ही उससे बेतरह बदगुमान हो गई। बैठे बिठाए एहतियातन गालियां दे देती, उस पर नजर रखने के लिए पीछे पीछे फिरती। मगर बुढ़िया अब टूट चुकी थी। 40 बरस मैला ढोने से उसकी कमर मुस्तकिल तौर पर एक तरफ लचक कर वही थम गई थी। हमारी पुरानी मेहतरानी थी, हम लोगों के आंवल नाल उसी ने गाड़े थे। ज्यों ही अम्मा के दर्द लगते मेहतरानी दहलीज पर आकर बैठ जाती और बाज वक्त लेडी डॉक्टर को निहायत मुकीद हिदायतें देती। बलायात को दफा करने के लिए कुछ ताबीज भी लाकर पट्टी से बांध देती। मेहतरानी की घर में खासी बुजुर्गाना हैसियत थी। इतनी लाडली मेहतरानी की बहू एकाएक लोगों की आंखों में कांटा बन गई। चपरासन और बाबरचन की तो बात और थी, हमारी अच्छी भली भावजों का माथा उसे इटलाते देकर ठिनक जाता।
अगर वह उस कमरे में झाड़ू देने जाती जिनमें उनके मियाँ होते थे, वे बड़बड़ाकर दूध पीते बच्चे के मुंह से छाती छीन कर भागती कि कहीं वह डायन उनके शौहरों पर टोना टोटका न कर रही हो। गोरी क्या थी, बस एक मरखना लंबे लंबे सींगों वाला बिजार था कि छुट्टा फिरता था। लोग अपने कांच के बर्तन भाड़े दोनों हाथों से समेट कर कलेजे से लगाते, और जब हालात ने नाजुक सूरत पकड़ी तो शागिर्द पेशे की महिलाओं का एक बकायदा वफद अम्मा के दरबार में हाजिर हुआ। बड़े जोर शोर से खतरा और उसके खौफनाक नतीज पर बहस हुई। पति रक्षा की एक कमेटी बनाई गई जिसमें सब भावजों ने शदोमत से वोट दिए और अम्मा को सदर एजाजी का ओहदा सौंपा गया। सारी खवातीन हस्बे मरातब जमीन पीढ़ियों और पलंग की अदवाइन पर बैठी। पान के टुकड़े तकसीम हुए और बुढ़िया को बुलाया गया। निहायत इत्मीनान से बच्चों के मुंह में दूध देकर सभा में खामोशी कायम की गई और मुकदमा पेश हुआ। क्योरी चुड़ैल, तूने कामुक बहू को छूट दे रखी है कि हमारी छातियों पर कोदो दले। इरादा क्या है तेरा, क्या मुंह काला कराएगी? मेहतरानी तो भरी ही बैठी थी, फूट पड़ी। क्या करूं बेगम साहब, हराम खोर को चार चोट की मार भी दई मैं तो, रोटी भी खाने को ना दई, पर रांड मेरे तो बस की नहीं। अरे रोटी की क्या कमी है उसे, बाबरचन ने ईंटा फेंका। सहारनपुर के खानदानी बाबरचन और फिर तीसरी बीवी, क्या तीहा था कि अल्लाह की पनाह। फिर चपड़ासन, मालन और धोबन ने मुकदमे को संगीन बना दिया। बेचारी महतरानी बैठी सबकी लताड़ सुनती और अपनी खारिश जदा पिंडलियां खुजलाती रही। बेगम साहब, आप जैसी बताओ वैसी करने से मोए न थोड़े ही, पर का करूं, करान का टेंटुआ दबाए देओ। टेंटुआ दबाने के हसीन ख्याल से महिलाओं में मसर्रत की एक लहर दौड़ गई और सबको बुढ़िया से बे इंतहा हमदर्दी पैदा हो गई। अम्मा ने राय दी, मुई को मैं के फिकवा दे। ए बेगम साहब, कहीं ऐसा हो सके है? मेहतरानी ने बताया कि बहू मुफ्त हाथ नहीं आई है, सारी उम्र की कमाई पूरे 200 झोंके हैं, तब मुस्टंडी हाथ आई है। इतने पैसों में तो दो गाय आ जाती, मजे से भर कलसी दूध देती, पर ये रान तो दुलत्तियां ही देती है। अगर इसे मैके भेज दिया गया तो इसका बाप इसे फौरन दूसरे मेहतर के हाथ बेच देगा। बहू सिर्फ बेटे के बिस्तर की जीनत ही तो नहीं, दो हाथों वाली है पर चार आदमियों का काम निपटाती है। राम अवतार के जाने के बाद बुढ़िया से इतना काम क्या संभलता, ये बुढ़ापा तो अब बहू के दो हाथों के सदके में बीत रहा है। महिलाएं कोई नासमझ ना थी, मामला इखलाकियात से हटकर इक्तिसादियात पर आ गया। वाकई बहू का वजूद बुढ़िया के लिए लाजिमी था। 200 रुपए का माल किसका दिल है कि फेंक दे। उन 200 के अलावा ब्याह पर जो बनिए से लेकर खर्च किया था, जजमान खिलाए थे, बिरादरी को राजी किया था, ये सारा खर्चा कहाँ से आएगा? राम अवतार को जो तनख्वाह मिलती थी वह सारी उधार में डूब जाती थी। ऐसी मोटी ताजी बहू अब तो 400 से कम में ना मिलेगी। पूरी कोठी की सफाई के बाद और आसपास की चार कोठियां निपटाती है। रान काम में चौकस है वैसे, फिर भी अम्मा ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर इस लुच्ची का जल्द अज जल्द कोई इंतजाम न किया गया तो कोठी के अहाते में नहीं रहने दिया जाएगा। बुढ़िया ने बहुत बावेला मचाया और जाकर बहू को मुंह भर भर कर गालियां दी, झोंटे पकड़कर मारा पीटा भी। बहू उसकी जर खरीद थी, पिटती रही, बड़बड़ाती रही और दूसरे दिन सारे मामले की धज्जियां बिखेर दी। बावर्ची, भिष्टी, धोबी और चपरासियों ने तो अपनी बीवियों की मरम्मत की, यहाँ तक कि बहू के मामले पर मेरे मुहज्जब भाभियों और शरीफ भाइयों में भी खटपट। भाभियों के मैके तार जाने लगे, गरज बहू हरे भरे खानदान के लिए सुई का काटा बन गई। मगर 2-4 दिन के बाद बूढ़ी मेहतरानी के देवर का लड़का रतिराम अपनी ताई से मिलने आया, फिर वही रह पड़ा। 2-4 कोठियों में काम बढ़ गया था सो वह भी उसने संभाल लिया। अपने गांव में आवारा ही तो घूमता था, उसकी बहू अभी नाबालिग थी इसलिए गौना नहीं हुआ था। रतिराम के आते ही मौसम एकदम लौट पौट कर बिल्कुल ही बदल गया, जैसे घनघोर घटाएं हवा के झोंकों के साथ तितर बितर हो गई। बहू के कह कहे खामोश हो गए, कांसे के कड़े गूंगे हो गए और जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाए तो वह चुपचाप झूलने लगता है, ऐसे बहू का घूंघट झूलते झूलते नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अब वह बजाय बेनथे बैल के निहायत शर्मीली बहू बन गई। जुमला महिलाओं ने इत्मीनान का सांस लिया, स्टाफ के मर्दुए उसे छेड़ते भी तो वह छुई मुई की तरह लजा जाती, पर ज्यादा आंख दिखाते तो वह घूंघट में से भेंगी आंख को और तिरछा करके रतिराम की तरफ देखती, जो फौरन बाजू खुजलाता सामने आकर डट जाता। बुढ़िया पुरसुकून अंदाज में दहलीज पर बैठी अंध खुली आँखों से यह आनंद नायक ड्रामा देखती और गुड़गुड़ी पिया करती। चारों तरफ ठंडा ठंडा सुकून छा गया, जैसे फोड़े का मवाद निकल गया हो। मगर अब बहू के खिलाफ एक नया महास कायम हो गया और वह अमले की मर्द जात पर मुश्तमिल था। बात बेबात बावर्ची जो उसे पराठे तलकर दिया करता था, कूड़ी साफ न करने पर गालियां देने लगा। धोबी की शिकायत थी कि वह कलफ लगाकर कपड़े रस्सी पर डालता है, ये हरामजादी खाक उड़ाने आ जाती है। चपरासी मर्दाने में 10-10 मर्तबा झाड़ू दिलवाते, फिर भी वह वहाँ की गलाजत का रोना रोते रहते। भिष्टी जो उसके हाथ धुलाने के लिए कई मशके लिए तैयार रहता था, अब घंटों सहन में छिड़काव करने को कहती, मगर टालता रहता ताकि वो सूखी जमीन पर झाड़ू दे तो चपरासी गर्दा उड़ाने के जुर्म में उसे गालियां दे सके। मगर बहू सिर झुकाए सबके डांट फटकार एक कान सुनती दूसरे कान उड़ा देती। न जाने सास से क्या जाकर कह देती कि वह काय काय करके सबका भेजा चाटने लगती। अब उसके नजर में बहू निहायत पारसा और नेक हो चुकी थी। फिर एक दिन दरोगा जी दाढ़ी वाले, जो तमाम नौकरों के सरदार थे और अम्मा के खास मुशीर समझे जाते थे, अब्बा के हुजूर में दस्तबस्ता हाजिर हुए और उस भयानक बदमाशी और गलाजत का रोना रोने लगे जो बहू और रतिराम के नाजायज ताल्लुकात के सारे शागिर्द पेशे को गंदा कर रही थी। अब्बा ने मामला सेशन सुपुर्द कर दिया, यानी अम्मा को पकड़ा दिया। महिलाओं की सभा फिर से जुड़ी और बुढ़िया को बुलाकर उसके लत्ते लिए गए। अरे निगोड़ी, खबर भी है तेरी एक कामुक बहू क्या गुल खिला रही है। मेहतरानी ने ऐसे चुंधरा कर देखा जैसे कुछ नहीं समझती गरीब कि किसका जिक्र हो रहा है। और जब उसे साफ साफ बताया गया कि चश्मदीद गवाहों का कहना है कि बहू और रतिराम के ताल्लुकात नाजायज हद तक खराब हो चुके हैं, दोनों बहुत ही काबिले एतराज हालात में पकड़े गए हैं, और उस पर बुढ़िया बजाय अपनी बेहतरी चाहने वालों का शुक्रिया अदा करने के बहुत चराग पा हुई, बड़ी बावेला मचाने लगी कि राम अवतरवा होता तो उन लोगों की खबर लेता जो उसकी मासूम बहू पर तोहमत लगाते हैं। बहू निगोड़ी तो अब चुपचाप राम अवतरवा की याद में आंसू बहाया करती है, कामकाज भी जान तोड़ कर करती है, किसी को शिकायत नहीं होती, ठठोल भी नहीं करती। लोग उसके नाहक दुश्मन हो गए हैं, बहुत समझाया मगर वह तो मातम करने लगी कि सारी दुनिया इसकी जान की लागू हो गई है। आखिर बुढ़िया और उसकी मासूम बहू ने लोगों का क्या बिगाड़ा है। वह तो किसी के लेने में न देने में आज तक उसने किसी का भांडा नहीं फोड़ा, उसे क्या जरूरत जो किसी के फटे में पैर घुसाती फिरे। कोठियों के पिछवाड़े क्या नहीं होता, मेहतरानी से किसी का मैला नहीं छुपता। इन बूढ़े हाथों ने बड़े लोगों के गुनाह दफन किए हैं, ये दो हाथ चाहे तो रानियों के तख्त उलट दे पर नहीं, उसे किसी से बुग्स नहीं। अगर उसके गले पर छुरी दबाई गई तो शायद गलती हो जाए, वैसे वह किसी के राज अपने बूढ़े कलेजे से बाहर नहीं निकलने देगी। उसका तीहा देखकर फौरन छुरी दबाने वालों के हाथ ढीले पड़ गए। सारी महिलाएं उसको पुचकारने लगी, बहू कुछ भी करती थी उनके अपने किले तो महफूज थे, तो फिर शिकायत कैसी। फिर कुछ दिन के लिए बहू के इश्क की चर्चा कम होने लगी, लोग कुछ भूलने लगे, मगर ताड़ने वालों ने ताड़ लिया कि कुछ दाल में काला है। बहू का भारी भरकम जिस्म भी दाल में काले को ज्यादा ना छुपा सका और लोग बुढ़िया को समझाने लगे, मगर उस नए मौजू पर बुढ़िया बिल्कुल उड़न घाइयां बताने लगी, बिल्कुल ऐसी बन गई जैसे एकदम ऊंचा सुनती हो। अब वह ज्यादातर खाट पर लेटी बहू और रतिराम पर हुक्म चलाया करती, कभी खांसती छींकती बाहर धूप में आ बैठती तो वह दोनों उसकी ऐसी देखरेख करते जैसे वह कोई पटरानी हो। भली बीवियों ने उसे खूब समझाया, रतिराम का मुंह काला कर और इससे पहले कि राम अवतार लौट कर आए बहू का इलाज करवा डाल, वह खुद इस फन में माहिर थी, दो दिन में सफाई हो सकती थी, मगर बुढ़िया ने कुछ समझ कर ही ना दिया। बिल्कुल इधर उधर की शिकायतें करने लगी कि उसके घुटनों में पहले से ज्यादा ऐठन होती है, नीज कोठियों में लोग बहुत ही ज्यादा बादी चीजें खाने लगे हैं, किसी न किसी कोठी में दस्त लगे ही रहती है, उसकी टाल मटोल पर जलकर नासहीन मरमंड हो गए। माना कि बहु औरत जात है, नादान है, भोली बड़ी बड़ी शरीफजादियों से खता हो जाती है, लेकिन उनकी आला खानदान की मोअस सांसें यो कान में तेल डालकर नहीं बैठ जाती। पर ना जाने यह बुढ़िया क्यों सठिया गई है, जिस बला को वह बुढ़िया बड़ी आसानी से कोठे के कूड़े की तरह दफन कर सकती थी, उसे आंखें मीचे पलने दे रही है। राम अवतार के आने का इंतजार था, हर वक्त धमकियां तो देती रहती थी, आन दे राम अवतरवा का, कहांगी तोरी हड्डी पसली एक कर दे है। और अब राम अवतरवा लाम पर से जिंदा वापस आ रहा था। फिजा ने सांस रोक ली थी, लोग एक मुहिब हंगामे के मुंतजिर थे, मगर लोगों को सख्त कोफ्त हुई जब बहू ने लौंडा जना, बजाय उसे जहर देने के बुढ़िया की मारे खुशी से बांछे खिल गई। राम अवतार के जाने के 2 साल बाद पोता होने पर वह कतई आश्चर्यचकित ना थी। घर घर फटे पुराने कपड़े और बधाई समेटती फिरी। उसका भला चाहने वालों ने उसे हिसाब लगाकर बहुत समझाया कि लौंडा राम अवतार का तो हो ही नहीं सकता, मगर बुढ़िया ने कतई समझ कर ना दिया। उसका कहना था आषाढ़ में राम अवतार लाम पर गया, जब बुढ़िया पीली कोठी के नए अंग्रेजी वजा के संडास में गिर पड़ी थी। अब चैत लग रहा है और जेठ के महीने में बुढ़िया को लू लगी थी, मगर बाल बाल बच गई थी, जब ही से उसके घुटनों में दर्द बढ़ गया। बैद जी पूरे हरामी है, तवा में खड़िया मिला कर देते हैं। इसके बाद वह बिल्कुल असल सवाल से हटकर खिलाओं की तरह ऑल फॉल बकने लगती। किसके दिमाग में इतना बूता था कि वह बात उस बुढ़िया को समझाता जिसे ना समझने की वह फैसला कर चुकी थी। लौंडा पैदा हुआ तो उसने राम अवतार को चिट्ठी लिख पाई। राम अवतार को बाट चुम्मा प्यार के मालूम हो कि यहाँ सब कुशल है और तुम्हारी कुशलता भगवान से नेक चाहते हैं और तुम्हारे घर में पूत पैदा हुआ है, सो तुम इस खत को तार समझो और जल्दी से आ जाओ। लोग समझते थे कि राम अवतार जरूर चिराग पा होगा, मगर सब उम्मीदों पर ओस पड़ गई जब राम अवतार का मसर्रत से लबरेज खत आया कि वह लौंडे के लिए मोजे और बनियाइन ला रहा है। जंग खत्म हो गई और अब बस वह आने ही वाला है। बुढ़िया पोते को घुटनों पर लिटाए खाट पर बैठी राज किया करती। भला इससे ज्यादा हसीन बुढ़ापा क्या होगा कि सारी कोठियों का काम तुरत फुरत हो रहा है, महाजन का सूद पाबंदी से चुक रहा हो और घुटने पर पोता सो रहा हो। खैर, लोगों ने सोचा राम अवतार आएगा, असलियत मालूम होगी। अब राम अवतार जंग जीत कर आ रहा था, आखिर सिपाही है, क्यों ना खून खोलेगा। लोगों के दिल धड़क रहे थे। शागिर्द पेशे की फिजा जो बहू की तीता चश्मे की वजह से सो गई थी, 2-4 खून होने और नाके कटने की आस में जाग उठी। लौंडा साल भर का होगा जब राम अवतार लौटा। शागिर्द पेशे में खलबली मच गई। बावर्ची ने हांडी में ढेर सा पानी झोंक दिया ताकि इत्मीनान से मुंह पीटे का लुत्फ उठाए। धोबी ने कलफ का बर्तन उतार कर मुंडेर पर रख दिया और भिष्टी ने डोल कुएं के पास रख दिया। राम अवतार को देखते ही बुढ़िया उसकी कमर से लिपट कर चिंघाड़ने लगी, मगर दूसरे लम्हे खीसे काढ़े लौंडे को राम अवतार की गोद में देकर ऐसे हंसने लगी जैसे कभी रोई ही ना हो। राम अवतार लौंडे को देखकर ऐसे शर्माने लगा जैसे वही उसका बाप हो। झटपट उसने संदूक खोलकर सामान निकालना शुरू किया। लोग समझे खुकरी या चाकू निकाल रहा है, मगर जब उसने उसमें से लाल बनियान और पीले मोजे निकाले तो सारे अमले की कुवते मर्दाना पर जरबकारी लगी, हत्तेरी की। साला सिपाही बनता है, हिंजड़ा जमाने भर का। और बहू जैसे सिमटी सिमटाई नई नवेली दुल्हन ने कांसी की थाली में पानी भरकर राम अवतार के बदबूदार फौजी बूट उतारे और चरण धोकर पिए। लोगों ने राम अवतार को समझाया और उसे गावदी कहा, मगर वह गावदी की तरह खीसे काढ़े हंसता रहा जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो। रतिराम का गौना होने वाला था सो वह चला गया था। राम अवतार की इस हरकत पर ताज्जुब से ज्यादा लोगों ने गुस्सा किया। हमारे अब्बा जो आम तौर पर नौकरों की बातों में दिलचस्पी नहीं लिया करते थे, वह भी जज्बज हो गए। अपनी सारी कानून दानी का दाव लगाकर राम अवतार को कायल करने पर तुल गए। क्यों बे, तू 3 साल बाद लौटा है ना? मालूम नहीं हजूर, थोड़ा कम ज्यादा इतना ही रहा होगा। उधर लौंडा साल भर का है, इतना ही लगे है सरकार, पर बड़ा बदमाश है ससुरा। राम अवतार शर्माए। अबे तो हिसाब लगा ले। जब क्या लगाऊं सरकार, राम अवतार ने मरगिल्ली आवाज में कहा। उल्लू के पट्टे या कैसे हुआ? अब जे मैं का जानू सरकार, भगवान की देन है। भगवान की देन? तेरा सर, यह लौंडा तेरा नहीं हो सकता। अब्बा ने उसे चारों ओर से घेर कर कायल करना चाहा कि लौंडा हरामी है, तो वह कुछ कुछ कायल सा हो गया। फिर वह मरी हुई आवाज में अहमको की तरह बोला, तो अब का करूं सरकार, हरामजादी को मैंने बड़ी मार दी। वह गुस्से से बिफर कर बोला, अबे उल्लू का पट्टा है तू, निकाल बाहर क्यों नहीं करता कमबख्त को? नहीं सरकार, कहीं ऐसा हो सके है? राम अवतार घिघियाने लगा। क्यों बे? हजूर 250-300 फिर दूसरी सगाई के लिए कहाँ से लाऊंगा? और बिरादरी जिमाने में 100-200 अलग खर्च हो जाएंगे। क्यों बे? तुझे बिरादरी क्यों खिलानी पड़ेगी? बहू के बदमाशी का तावान तुझे क्यों भुगतना पड़ेगा? जब मैं कहाँ जानू सरकार, हमारे में ऐसा ही होवे है। मगर लौंडा तेरा नहीं है राम अवतार, उस हरामी रति राम का है, अब्बा ने आजिज आकर समझाया। तो का हुआ सरकार, मेरा भाई होता है रतिराम, कोई गैर नहीं, अपना ही खून है, निरा उल्लू का पट्टा है। अब्बा भिन्ना उठे। सरकार लौंडा बड़ा हो जावेगा, अपना काम समेटेगा। राम अवतार ने गिड़गिड़ा कर समझाया, वह दो हाथ लगाएगा सो अपना बुढ़ापा तैर हो जाएगा। निदामत से राम अवतार का सर झुक गया और न जाने क्यों एकदम राम अवतार के साथ अब्बा का भी सर झुक गया। जैसे उनके जहन पर लाखों करोड़ों हाथ छा गए। ये हाथ हरामी है ना हलाली, यह तो बस जीते जागते हाथ है जो दुनिया के चेहरे से गलाजत धो रहे हैं, उसके बुढ़ापे का बोझ उठा रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने मिट्टी में लिथड़े हुए स्याह हाथ धरती की मांग में सिंदूर सजा रहे हैं।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।